सुषमा देवी कुछ पल तक यूं ही खड़ी रहीं। हाथ में तस्वीर थी, लेकिन उनकी उंगलियां अब कांप नहीं रही थीं, बल्कि सख्ती से कसी हुई थीं, जैसे उस फ्रेम के भीतर कैद चेहरे को पकड़कर रख लेना चाहती हों। कमरे में भारी खामोशी थी। शामली की सांसें तेज थीं, बेतरतीब, जैसे किसी ने अचानक उसके भीतर से हवा खींच ली हो। सुषमा देवी ने गहरी सांस ली, फिर तस्वीर को पलटकर मेज पर रखा। 2 साल पहले की बात है। उनकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन हर शब्द पत्थर की तरह गिर रहा था। एक सोमवार था, सावन का महीना। सुबह सुबह मंदिर गए थे हम। शामली ने अनजाने में एक कदम आगे बढ़ाया। उसका मन चाह रहा था कुछ कहे, कुछ रोके, लेकिन उसकी जुबान जैसे जड़ हो गई थी। हर साल जाते थे, सुषमा देवी ने कहना जारी रखा। वही मंदिर, वही घंटियों की आवाज़, वही सीढ़ियाँ। उनकी आंखों में तस्वीरें चलने लगीं। मेरे पति को उस दिन पैर में दर्द था, उन्होंने कहा। डॉक्टर ने आराम को कहा था, लेकिन वो माने नहीं। कहते थे, भगवान के दर पर दर्द लेकर जाऊंगा तो शायद कुछ हल्का हो जाए। सुषमा देवी के होठों पर एक कड़वी मुस्कान उभई, जो मुस्कान नहीं, सिर्फ यादों की ऐंठन थी। पूजा के बाद हम बाहर निकले, उन्होंने आगे कहा। मंदिर के बाहर सड़क है, संकीर्ण, लेकिन हमेशा भीड़ रहती है। उनकी आवाज़ अचानक थोड़ी सख्त हो गई। तभी एक ट्रक, बहुत तेज रफ्तार में, बेकाबू। शामली की आंखें फैल गईं। लोग चिल्लाए, सुषमा देवी ने कहा, लेकिन उस शोर में भी एक लड़की थी, सड़क के बीचों बीच खड़ी, कान से फोन लगाए, दुनिया से बिल्कुल बेखबर। शामली के सीने में जोर से कुछ टूटा। ट्रक सीधा उसी की तरफ बढ़ रहा था। सुषमा देवी की आवाज़ अब ठंडी नहीं रही, उसमें दर्द की धार थी। एक पल का भी समय नहीं था, उन्होंने आंखें बंद कर ली। मेरे पति दौड़े, उनकी आवाज़ भर्रा गई। उन्होंने उस लड़की को पूरी ताकत से धक्का दिया। सड़क के किनारे शामली की सांस अटक गई। वो लड़की गिर पड़ी, सुषमा देवी ने कहा, लेकिन बच गई। फिर और मेरे पति, उनका गला रुंध गया, उन्होंने आंखें खोली। धक्का देते वक्त उनका पैर लड़खड़ा गया, पहले से ही दर्द था, वो खुद संतुलन नहीं बना पाए। कमरे में जैसे हवा जम गई। ट्रक, सुषमा देवी ने बहुत धीरे कहा, उन्हें कुचलता हुआ निकल गया। एक पल, सिर्फ एक पल। शामली के कानों में कुछ बजने लगा, जैसे किसी ने भीतर से शोर मचा दिया हो। मौके पर ही, सुषमा देवी ने वाक्य पूरा नहीं किया, ज़रूरत भी नहीं थी। शामली के पैरों ने साथ छोड़ दिया, वो कुर्सी का सहारा लेकर खड़ी रही। और वो लड़की, सुषमा देवी ने उसकी तरफ देखा, जिसे उन्होंने बचाया था। उनकी नज़र सीधी शामली की आंखों में धंस गई। वो तुम थी शामली। शामली के मुंह से एक टूटी हुई आवाज़ निकली। नहीं, उसने सिर हिलाया, मैं तो। उसके दिमाग में तस्वीरें धड़ाधड़ो भरने लगीं। फ़ोन पर बात करते हुए सड़क पर खड़ा होना, अचानक किसी का धक्का, गिरते हुए फ़ोन, लोगों की चीखें और फिर अंधेरा। मुझे याद है, शामली की आवाज़ कांप रही थी। एक आदमी, उन्होंने मुझे धक्का दिया था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मुझे नहीं पता था, वो फूट पड़ी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी एक पल की लापरवाही, सुषमा देवी ने उसकी बात काट दी, किसी की पूरी जिंदगी छीन लेगी। शामली घुटनों के बल बैठ गई। मुझसे गलती हो गई, वो रोते हुए बोली। मैं मानती हूँ, मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठी, उसने हाथ जोड़ दिए। अगर मैं उस दिन फ़ोन पर बात नहीं कर रही होती, उसकी आवाज़ सिसकियों में टूट रही थी। अगर मैं ज़रा भी सावधान होती, उसने सिर झुका लिया। मुझे माफ़ कर दीजिए, वो लगभग गिड़गिड़ाई, मैं जानबूझकर नहीं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बस, सुषमा देवी ने कहा, उनकी आवाज़ में कोई कंपन नहीं था। माफ़ी से मरे हुए लौट आते हैं, उन्होंने पूछा। शामली ने सिर हिलाया। नहीं, वो रोती हुई बोली, लेकिन मेरा दिल हर दिन खुद को सज़ा देता है, मुझे आज तक उस हादसे की नींद नहीं आती। उसने आंसू पूछे। अगर मुझे पता होता कि वो आपके पति हैं, वो भर्राए गले से बोली, तो मैं तो क्या, सुषमा देवी ने ठंडेपन से पूछा, तो तुम ज़्यादा रोती। शामली चुप हो गई। मेरे पति ने तुम्हारी जान बचाई, सुषमा देवी ने कहा, और तुमने उनकी जान ले ली। नहीं, शामली चीख पड़ी, मैंने नहीं लिया, लेकिन वजह तुम बनी, सुषमा देवी ने एक एक शब्द पर जोर दिया। उन्होंने कदम आगे बढ़ाया, और हर वजह की एक कीमत होती है। शामली ने डर से उनकी तरफ देखा। क्या आप मुझसे नफरत करती हैं, उसने धीमे से पूछा। सुषमा देवी रुकी। नफ़रत, उन्होंने दोहराया, फिर हल्की सी, बेहद कड़वी हंसी। नफ़रत तो बहुत छोटी चीज़ है शामली, उन्होंने कहा, जो मेरे भीतर है वो उससे कहीं ज़्यादा ठंडा और कहीं ज़्यादा गहरा है। शामली कांपने लगी। मैं जो भी सज़ा देंगी भुगत लूँगी, उसने कहा, लेकिन प्लीज़ मुझे एक मौका। मौका? सुषमा देवी की आंखें सख्त हो गईं। मेरे पति को मौका मिला था, उन्होंने पूछा। शामली का सिर झुक गया। नहीं। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। सुषमा देवी ने तस्वीर उठाई, उस पर जमी धूल को बहुत प्यार से पूछा। तुम्हें सजा भुगतनी होगी, उन्होंने बिना पलटे कहा, समझी। शामली की रुलाई रुक गई, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। कैसी सजा, उसने कांपते हुए पूछा। सुषमा देवी ने उसकी तरफ देखा। वो वक्त बताएगा, उन्होंने कहा, लेकिन इतना याद रखना, ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। शामली के भीतर कुछ बैठ गया। तुम हवेली में रहोगी, सुषमा देवी ने आगे कहा, मेरी आंखों के सामने हर दिन हर पल। उनकी आवाज फुसफुसाहट में बदल गई, ताकि तुम्हें याद रहे किस कीमत पर तुम जिंदा हो। श्यामली के होंठ हिले, लेकिन आवाज नहीं निकली। वो बस वहीं बैठी रही, टूटी हुई, डरी हुई और उस सच के नीचे दबी हुई कि उसकी जिंदगी किसी और की मौत से जुड़ी थी। कमरा फिर से ठहर गया, वक्त जैसे यहीं रुक गया हो।